पृष्ठ संख्या 333, शीर्षक है मोक्ष और उसके मार्ग। ईसाई धर्म, जिसे पाप से मुक्ति या साल्वेशन कहा जाता है, वही हिंदू धर्म में मोक्ष के नाम से अभिहित किया जाता है। मोक्ष, जिसे आत्म साक्षात्कार कहा जाता है, हिंदू धर्म में इसके लिए चार मार्गों का उल्लेख मिलता है। पहला है ज्ञान मार्ग, दूसरा भक्ति मार्ग, तीसरा कर्म मार्ग तथा चौथा है योग। पृष्ठ संख्या 334। इसी को ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग तथा राजयोग भी कहा जाता है। सामान्य रूप से योग का अर्थ ढंग या मार्ग से लिया जाता है। वैसे योग शब्द युज धातु से बना है, जिसका अर्थ युक्त होना, जोड़ना या मिलना होता है। अर्थात योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन, भक्त का भगवान से संयोग। मनुष्य की तीन प्रधान प्रकृति होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार किसी मार्ग का अनुसरण करके भगवान से युक्त हो सकता है, अपने भूले हुए स्वरूप को पुनः प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। मनुष्य के व्यक्तित्व में ज्ञान, भावना तथा संकल्प का समावेश है। जिस व्यक्ति में ज्ञान की प्रधानता है, वह ज्ञान मार्ग या योग का, जो व्यक्ति भावना प्रधान है वह भक्ति मार्ग योग का, तथा जिसमें संकल्प की प्रधानता है वह कर्म मार्ग का अनुसरण करके आत्म साक्षात्कार कर सकता है। पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहा है। इससे भी आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो सकती है, अतः यह भी एक विशिष्ट मार्ग है। गीता हिंदू धर्म का मूल आधार है, इसे सर्वशास्त्रमयी कहा गया है। इसमें सभी मार्गों का उल्लेख मिलता है, यहाँ तक कि इन सभी मार्गों का उसमें समन्वय भी मिलता है। इसमें बतलाया गया है कि ज्ञानी भक्त सभी कर्मों का संपादन करते हुए योग साधना से अपनी चित्त वृत्तियों का शासन करके अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। अब अगला शीर्षक है ज्ञान मार्ग। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि अज्ञान के कारण ही आत्मा अपने को शरीर रूप में समझ लेती है, यही बंधन का कारण है। अज्ञानता के कारण ही मनुष्य स्वार्थी तथा लोभी हो जाता है, उसका दृष्टिकोण दोषपूर्ण होता है। यही कारण है कि उसे सत्य का ज्ञान नहीं होता। अतः अज्ञानता के कारण हुए बंधन से ज्ञान द्वारा ही मुक्ति मिल सकती है। ज्ञान से ही अज्ञान को हटाना होगा। अज्ञान है सत्य को असत्य समझना और असत्य को सत्य समझना। इस अज्ञान को दूर करना ज्ञान द्वारा ही संभव बनाया जा सकता है। यह ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है, जिससे सद असद का ज्ञान संभव है। यही ज्ञान मार्ग के रूप में भी माना जाता है। जब ज्ञान से अज्ञान को दूर करके सत्य की प्राप्ति करते हैं, आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जान लेते हैं, तो वह मार्ग के रूप में भी माना जाता है। सारांश में ज्ञान पूर्णता की प्राप्ति भी है और पूर्णता की प्राप्ति का मार्ग भी है। ज्ञान मार्ग को मुख्य रूप से गीता तथा शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत में महत्व दिया गया है। शंकर के अनुसार वास्तविक ज्ञान ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध होने पर ही होता है। इस बोध से ब्रह्मविद ब्रह्मो भवति का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। शंकर के अनुसार बिना इस ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। रिते ज्ञानन्न मुक्ति। इस उक्ति से ज्ञान मार्ग की श्रेष्ठता सिद्ध की गई है। गीता के अनुसार भी ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ बतलाया गया है। ज्ञान से ही सभी अन्य मार्ग सफल बनाए जा सकते हैं। इसी में सबकी परिसमाप्ति होती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। अब अगला शीर्षक है ज्ञान मार्ग का अधिकारी कौन। शंकर के अनुसार ज्ञान मार्ग से ही मुक्ति संभव है, परंतु ज्ञान मार्ग के सभी अधिकारी नहीं हो सकते। यही कठिन मार्ग बतलाया गया है। यह कठिन मार्ग उसी के लिए अनुकूल है जो बुद्धिमान हो, विद्वान हो और तर्क वितर्क में कुशल हो। दूसरी आवश्यकता इस मार्ग के लिए यह बतलाई गई है कि जो मनुष्य सद असद विवेकी हो, वैराग्यवान हो, सम दमादि षट संपत्ति युक्त हो तथा जिसमें मोक्ष की उत्कृष्ट इच्छा हो, ऐसा ही अधिकारी व्यक्ति ज्ञान मार्ग का अनुयायी हो सकता है। पृष्ठ संख्या 335। जिसके भीतर मोक्ष की उत्कट अभिलाषा जग जाती है उसे धार्मिक कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं। शंकर ऐसे जिज्ञासु और ज्ञान मार्ग पर चलने के अधिकारी के लिए चार साधनों का भी उल्लेख करते हैं, जिसे साधन चतुष्टय कहा गया है। अब अगला शीर्षक है साधन चतुष्टय। विवेक चूड़ामणि में मोक्ष के लिए चार आवश्यक साधनों का उल्लेख मिलता है। इन साधनों से ही सत्य स्वरूप आत्मा में स्थित हो सकती है, उनके बिना नहीं। वे साधन इस प्रकार हैं। इसमें पहला है नित्यानित्य वस्तु विवेक, दूसरा है लौकिक एवं पारलौकिक सुख भोग में वैराग्य होना, तीसरा है सम दम आदि छह संपत्तियों का होना और चौथा है मुमुक्षता। अब पहला बिंदु है नित्यानित्य वस्तु विवेक का अर्थ है वेदांत के इस वाक्य का निश्चय हो जाना कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, अर्थात साधक में ऐसा विवेक हो जो सद असद या नित्य और अनित्य वस्तुओं में विभेद कर सके। दूसरा है मोक्ष के लिए वैराग्य का होना आवश्यक है। सांसारिक भोगों में चिपके रहने से मोक्ष संभव नहीं होगा। विवेक चूड़ामणि के अनुसार तो दर्शन तथा श्रवण आदि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत अनित्य भोग पदार्थों में जो घृणा बुद्धि है वही वैराग्य है। तीसरा है साधक में समदम आदि साधन संपत्त का होना आवश्यक है, अर्थात सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, ये छह संपत्तियां हैं। इन साधनों को अपनाना चाहिए। सम का अर्थ है विषयों से या भोग की वस्तुओं से विरक्त होकर चित्त का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना। दम का तात्पर्य है कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर नियंत्रण में रखना। उपरत का अर्थ है बाह्य विषयों में वृत्ति का न होना। तितिक्षा का अर्थ है चिंता और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार किए सब प्रकार के कष्टों का सहन करना। अर्थात तितिक्षा सर्दी गर्मी आदि प्रतिकूल कष्टकारी तत्वों को सहन करने के अभ्यास को कहते हैं। श्रद्धा का अर्थ है शास्त्र और गुरु वाक्यों में सत्यत्व की बुद्धि करना। समाधान का तात्पर्य है अपनी बुद्धि को सब प्रकार से शुद्ध ब्रह्म में ही सदा स्थिर रखना। अब बिंदु चौथा है मोक्ष प्राप्त करने की दृढ़ संकल्प शक्ति को मुमुक्षा कहते हैं। अर्थात जितने भी अज्ञात कल्पित बंधन हैं उनको ज्ञान से त्याग देने की इच्छा को ही मुमुक्षा कहा जाता है। इन साधनों में मुमुक्षत्व और वैराग्य को इतना अधिक महत्व दिया गया है कि इनके होने पर ही सम दम आदि सफल हो सकते हैं। परंतु जहाँ ये दोनों तत्व मंद हैं वहाँ सम दम आदि का भी मरुस्थल में जल प्रतीति के समान आभास मात्र ही समझना चाहिए। इतना ही नहीं इन सब साधनों के होते हुए भी शंकर ने गुरु कृपा को अधिक महत्व दिया है। गुरु कृपा से ही भावबंधन से निवृत्त हुआ जा सकता है। गुरु कैसा होना चाहिए और उस गुरु के क्या लक्षण हैं इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है। जो निष्पाप हो कामनाओं से शून्य हो ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हो ब्रह्मनिष्ठ हो ईंधन रहित अग्नि के समान शांत हो अकारण दया सिंधु हो शरण में आए हुए की रक्षा करे सज्जनों के हितैषी हो ऐसे गुरु की शरण में जाकर मोक्ष के लिए प्रार्थना करें। फिर गुरु की कृपा से उनके उपदेश से साधक को अपरोक्षा अनुभूति होती है। परंतु गुरु की कृपा के अतिरिक्त स्वप्रयास भी आवश्यक है। वेदांत में इसके लिए कुछ विधियों का भी चर्चा की गई है। पृष्ठ संख्या 336 शीर्षक है ज्ञान मार्ग की विधियां। इसमें पहला है श्रवण। गुरु के उपदेशों को जो आत्मा ईश्वर जगत के विषय में दिया जाता है मनोयोग पूर्वक सुनना या श्रुतियों से इन विषयों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। आध्यात्मिकता का इस रूप में ज्ञान प्राप्त करना श्रवण कहलाता है। दूसरा है मनन। दूसरी विधि मनन की है। गुरु या श्रुति द्वारा प्राप्त ज्ञान के विषयों का स्वतः तार्किक विवेचन करना भी आवश्यक है। आध्यात्मिकता के विषय में सुने हुए महावाक्यों का निश्चयीकरण और प्रामाणिकता प्राप्त करने के लिए उनका बौद्धिक विवेचन प्राप्ति में सहायक होता है। अतः इस बौद्धिक चिंतन और तार्किक विश्लेषण को मनन कहा जाता है। तीसरा है निदिध्यासन। मनन के द्वारा साधक को सत्य का केवल बौद्धिक ज्ञान प्राप्त होता है। हो सकता है कि उसके विरोधी तर्क से साधक का ज्ञान गलत सिद्ध हो सकता है। अतः बौद्धिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं कहा जा सकता। ज्ञान अपरोक्ष होना चाहिए, उसी में निश्चितता संभव है। अतः निश्चित और अस्पष्ट ज्ञान के लिए एक तीसरी विधि की आवश्यकता है, जिसे निदिध्यासन कहा जाता है। इसमें साधक गुरु से प्राप्त ज्ञान को निरंतर ध्यान तथा विचार के द्वारा दृढ़ करता है। आत्मचिंतन और ध्यान से साधक को ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार इन तीनों विधियों द्वारा साधक का अज्ञान नष्ट हो जाता है और आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है। फिर उसे मोक्ष की अवस्था प्राप्त हो जाती है। वह अपने को सच्चिदानंद स्वरूप जानकर आनंदित हो जाता है। शंकराचार्य ऐसे मोक्ष प्राप्त पुरुष के लक्षण कई रूपों में बतलाते हैं। ऐसा पुरुष निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति में स्थित रहता है। उनकी बुद्धि बाह्य विषयों में नहीं रहती, वह बालकवत रहता है। इस संसार को स्वप्नवत देखता है। सदा ब्रह्म में चित्तलीन करके आनंद स्वरूप ब्रह्म में मग्न रहता है। वह स्थित प्रज्ञ होता है, अर्थात उसकी प्रज्ञा स्थिर होती है। बीती हुई बात को याद नहीं करता, भविष्य की चिंता नहीं करता। वर्तमान में प्राप्त हुए सुख दुख में उसकी उदासीनता रहती है। वह सदैव समदर्शी होता है। उसके चित्त में कोई विकार नहीं होता। सज्जनों के सत्कार से तथा दुष्ट जनों से पीड़ित किए जाने पर भी उसके चित्त का भाव समान रहता है। वह मनुष्य जीवन मुक्त है। मुक्त पुरुष के लक्षण इस प्रकार हैं। समुद्र में मिल जाने पर जैसे नदी का प्रवाह समुद्र रूप हो जाता है, उसी प्रकार दूसरों द्वारा प्रस्तुत किए विषय आत्मस्वरूप प्रतीत होने से उसके चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न नहीं होता। अब अगला शीर्षक है समीक्षात्मक निष्कर्ष। मोक्ष और उसके मार्ग के संबंध में समकालीन भारतीय दार्शनिकों ने भी पर्याप्त रूप में विचार किया है। पृष्ठ संख्या 337। इनमें स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद तथा गांधी के भी विचार महत्वपूर्ण हैं। स्वामी विवेकानंद आदि शंकराचार्य के ज्ञान योग संबंधी विचारों से पूर्णतया सहमत हैं, परंतु टैगोर, श्री अरविंद तथा गांधी जी का शंकर के मायावाद से मतभेद है। शंकर का मायावाद ज्ञान योगी को सांसारिक वस्तुओं से विमुख करता है। ज्ञान मार्ग व्यक्ति को बहुत ही कठिन स्थिति में डाल देता है। रहता तो है वह संसार और समाज के प्रलोभनों के बीच में, परंतु उससे कहा जाता है कि उनसे दूर रहो, अनासक्त रहो, स्वतंत्र रहो। यह कैसे संभव है? यह एक कठिन मार्ग है। इसकी दूसरी कमी यह है कि यह समाज और समूह से कोई संबंध नहीं रखता। धर्म का संबंध समाज से भी है, परंतु ज्ञान योग, आत्म साक्षात्कार, अनासक्त, वैराग्य तथा शारीरिक और मानसिक नियंत्रण के लिए समाज से दूर रहने की शिक्षा देता है। साधक समाज से अलग एकांत में इन विषयों की उपलब्धि कैसे कर सकता है? साधक के इस कठिन प्रयास में कोई सहायक नहीं है। ज्ञान मार्ग की अपेक्षा भक्ति और कर्म मार्ग में समाज या समूह का सहयोग रहता है। ज्ञान मार्ग की साधना अकेले में होती है, यह कैसे संभव है? यह एक वैयक्तिक मार्ग है। व्यक्तिगत मुक्ति की अपेक्षा सामाजिक या सामूहिक मुक्ति की चेतना अधिक आवश्यक है। ज्ञान योग से यह संभव नहीं है। श्री अरविंद ने इसीलिए समग्र मुक्ति की कल्पना की है, जो शंकर के वैयक्तिक मुक्ति से कहीं अधिक उचित और उपादेय सिद्ध होती है। अब अगला शीर्षक है भक्ति मार्ग। हिंदू धर्म में मोक्ष का दूसरा मार्ग भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग में जहाँ प्रबुद्ध और विचारशील व्यक्ति ही प्रवेश पा सकते हैं, वहीं भक्ति मार्ग उन सभी व्यक्तियों के लिए ठीक कहा जा सकता है जो भावुक और संवेदनशील हैं। भावना प्रधान व्यक्तियों के लिए भक्ति मार्ग ही उचित है। ईश्वर के अटूट प्रेम का ही नाम भक्ति है। ईश्वर प्रेम के द्वारा भी भक्त भगवान का मिलन हो जाता है। तदात्मीकरण की यह स्थिति मोक्ष की अवस्था है। अब शीर्षक है भक्ति का अर्थ और स्वरूप। भक्ति शब्द भज धातु से बना है। भज का अर्थ सेवा करना है। इस प्रकार भक्ति या सेवा के द्वारा भगवान से तादात्म्य स्थापित करने का नाम भक्ति मार्ग है। नारद, सांडिल्य, रामानुजाचार्य आदि मुनियों और दार्शनिकों ने भक्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है और गीता तथा श्रीमद् भागवत पुराण में भक्त की महिमा और सार्थकता का मार्मिक और प्रेरणादायक वर्णन मिलता है। संतों और साधकों ने भी भक्ति मार्ग का व्यवहारिक रूप प्रदर्शित किया है। भक्ति से संबंधित उनके उद्गार भजन और कीर्तन में प्रवाहित हुए हैं। सूर, तुलसी, मीरा, महाप्रभु चैतन्य, रैदास, तुकाराम, दक्षिण भारत के आलवार संतों, भक्तों तथा आधुनिक युग के महानतम भक्त श्री राम कृष्ण की भक्ति धारा से भक्ति साहित्य समृद्ध हुआ है। इन भक्तों की जीवनी और वचनामृत से ही इस बात की पुष्टि होती है कि भक्त और भगवान एक है। भक्ति जीवन मुक्ति का साधन और मार्ग है। नारद ने भक्ति को ईश्वर के लिए अतिशय प्रेम कहा है। सांडिल्य ने भक्ति को ईश्वर के प्रति सर्वोच्च अभिलाषा कहा है। भक्ति में ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम के कारण भक्त भगवान में ही निरंतर वास करता है, उन्हीं के रंग में रंग जाता है। भक्त को सर्वत्र भगवान का ही दृष्टिगोचर होता है। ईश्वर के प्रति भक्त अपने को समर्पित कर देता है। भगवान भक्त के प्रेम, समर्पण और श्रद्धा को देखकर उसे शरण में ले लेते हैं। गीता में भी भगवान भक्त को ही अपना प्रिय पात्र मानते हैं। गीता में वर्णित भक्त सर्वोच्च ज्ञान से युक्त है। पृष्ठ संख्या 338। गीता कहती है, जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभ हान में संतुष्ट है तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। पुनः कहा गया है कि जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न सोच करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वह भक्तियुक्त पुरुष मेरे को प्रिय है। गीता में भक्त के लक्षणों का विशद चर्चा है। उन लक्षणों से भी यह ज्ञात होता है कि भक्ति में ईश्वर प्रेम, वासना का त्याग, समर्पण की भावना, शरणागति, एकनिष्ठता तथा अनन्यता आदि विशेषताएं होती हैं। अब अगला शीर्षक है भक्ति के प्रकार। भक्ति के कई भेद हैं। इन भेदों को मुख्यतया हेतु की और अहेतु की भक्ति में रखा जाता है। जिस व्यक्ति की जैसी मानसिक स्थिति होती है उसी के अनुसार वह भक्ति पथ पर चलकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इसमें पहला है हेतु की भक्ति को सकाम भक्ति भी कहा जा सकता है। अर्थात भक्त किसी कामना अथवा हेतु से ईश्वर से प्रेम करता है। इसमें भक्त संसार के विषयों की प्राप्ति के लिए ईश्वर की शरण ग्रहण करता है, परंतु इस प्रकार की भक्ति मुक्ति में तो सहायक नहीं होती। हाँ, इससे अनन्य भक्ति या अहेत की भक्ति अथवा ईश्वर के लिए ईश्वर से प्रेम या भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। यह प्रथम सीढ़ी है जिस पर चलकर भक्त अहेत की भक्ति की ओर बढ़ता है। वही भक्ति साध्य और साधन दोनों हो जाती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि यह प्रधान लक्ष्य नहीं है। इसीलिए हेत की भक्त को गौड़ भक्ति कहा गया है। गीता में हेत की भक्ति के उदाहरण अर्थार्थी, आर्त तथा जिज्ञासु भक्त के रूप में मिलते हैं। सांसारिक पदार्थों के लिए ईश्वर को भजने वाला अर्थार्थी कहलाता है, संकट निवारण के लिए भजने वाला आर्त कहलाता है और ईश्वर को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाला जिज्ञासु कहा जाता है। ये तीनों प्रकार के भक्त हेतु की भक्ति के उदाहरण हैं। अब दूसरा है अहेतु की भक्ति। गीता में चौथे प्रकार की भक्ति की चर्चा आती है जिसे ज्ञानी भक्त की संज्ञा दी गई है। यह ज्ञानी भक्त निष्काम होता है, इसका कोई प्रयोजन नहीं होता, उसकी भक्ति अहेतु की होती है। इसी भक्ति को मुखिया या पराभक्ति भी कहते हैं। यह सर्वोच्च भक्ति है, अनन्या है, निष्काम है। यह भक्ति की पराकाष्ठा है। इसमें भक्त के लिए भक्ति की जाती है, ईश्वर के लिए ईश्वर की भक्ति की जाती है। भक्त सब कुछ त्याग कर केवल भगवान की शरण लेता है, इसीलिए इसे अनन्या भक्ति कहते हैं। यह शरणागति से ही संभव है। भक्त ईश्वर के शरण में जाकर सब कुछ उसी के ऊपर छोड़ देता है, बिल्ली के बच्चे की तरह। बिल्ली का बच्चा एक स्थान पर पड़ा म्याऊं म्याऊं करता रहता है। माँ जब चाहती है उठाकर दूसरी जगह ले जाकर रख देती है। पूर्ण निर्भरता, अपनी इच्छा कुछ नहीं। रामानुजाचार्य इस शरणागत की अवस्था को प्रपत्ति कहते हैं। यही पराभक्ति निष्काम भक्ति है। गीता में इसी को अनन्य प्रेम वाला ज्ञानी भक्त कहा गया है। अब अगला शीर्षक है प्रपत्ति। प्रपत्ति भक्ति की पराकाष्ठा कही जा सकती है। भक्ति प्रारंभिक अवस्था प्रपत्ति साध्य है। पृष्ठ संख्या 339। भक्ति में मुक्ति की कामना होती है। प्रपत्ति में भक्त ईश्वर के समक्ष पूर्ण समर्पण करता है। प्रपत्ति में भक्त फल भार तथा अपने स्वरूप का समर्पण कर देता है। भगवान से एकाकार की स्थिति प्रपत्ति है, भक्ति साधन है, प्रपत्ति साध्य है। इसीलिए एक साधन भक्ति है, दूसरा परमा भक्ति है। वास्तव में प्रपत्ति में ज्ञान भक्ति और कर्म तीनों का समन्वय रहता है। प्रपत्ति के 6 अंग हैं। रामानुजाचार्य ने प्रपत्ति के लिए 6 बातों को आवश्यक माना है। पहला है अनुकूलस्य संकल्पर्ज, अर्थात ईश्वर के अनुकूल संकल्प विचार और कर्म करना। दूसरा है प्रतिकूलस्य वर्जनम, अर्थात ईश्वर के प्रतिकूल विचार कर्म न करना। तीसरा है रचिप्यतीति विश्वासः, अर्थात ऐसा विश्वास हो कि ईश्वर अवश्य रक्षा करेंगे। चौथा है वर्णनम, अर्थात भक्त ईश्वर को ही एकमात्र पूज्य और आराध्य रूप में स्वीकार करें। पांचवा है कार्षण्य, ईश्वर के चरणों में ही शरण लें। छठवां है आत्मनिरपेक्ष, अर्थात दीन भाव से ईश्वर में दृढ़ विश्वास के साथ शरणागति हों। इन 6 रूपों में भक्त जब ईश्वर की शरण ग्रहण करता है तो ईश्वर भक्त के आत्मसमर्पण तथा अनन्य प्रेम को देखकर प्रसन्न होते हैं तथा उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। अब अगला शीर्षक है भक्ति मार्ग का अधिकारी कौन। इसमें बिंदु पहला है श्रद्धा सरलता निष्कपटता तथा शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही भक्ति मार्ग का अधिकारी हो सकता है। ईश्वर से अनुराग और प्रेम के लिए श्रद्धा आवश्यक है, अर्थात ईश्वर प्रेम के लिए श्रद्धा और निष्ठा तथा अनन्यता आवश्यक है। इसके बिना भक्ति मार्ग पर नहीं चला जा सकता। भक्ति के लिए विश्वास और आस्था आवश्यक है, परंतु विश्वास बिना सरलता के संभव नहीं है। भक्त को बालक की तरह सरल स्वभाव का होना चाहिए। संशय और कपट से युक्त मनुष्य भक्ति मार्ग का अधिकारी नहीं हो सकता। दूसरा है भक्ति मार्ग का अधिकारी वह है जो क्रोध काम मोह लोभ आदि विकारों पर नियंत्रण रखता है, जो अंदर बाहर से पवित्र हो अकिंचन हो। धन वैभव से परिपूर्ण व्यक्ति संग्रही होगा। उससे निष्प्रिय व्यक्ति ही एकनिष्ठ होकर ईश्वर से प्रेम कर सकता है। संतोषी व्यक्ति धैर्यवान निराभिमानी तथा मान अपमान से परे रहने वाला व्यक्ति ही भक्ति मार्ग का अनुसरण कर सकता है। बिंदु तीसरा है भक्ति मार्ग के लिए नैतिक सद्गुणों से युक्त पुरुष ही योग्य माना जाता है, जो नीति का त्याग नहीं करता, स्वभाव का सरल और सबसे प्रीति रखने वाला होता है, संशय नियम से जीवन व्यतीत करता है, श्रद्धा क्षमा दया मैत्री विनय त्याग तथा परोपकार में निरत व्यक्ति ही भक्ति मार्ग पर चल सकता है। चौथा है नैतिक गुणों से युक्त गृहस्थ भी भक्ति मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। आवश्यकता केवल ईश्वर अनुराग की है। त्याग में जीवन व्यतीत करने वाला गृहस्थ भक्त इस मार्ग के अनुयायी रहे हैं। इतिहास इसका साक्षी है। मध्यकालीन और आधुनिक संतों की परंपरा में कुछ एक को छोड़कर सभी गृहस्थ ही रह चुके हैं। श्री राम कृष्ण कहते थे कि यदि हाथ में तेल लगाकर कटहल काटा जाए तो उसका दूध नहीं चिपकता। उसी प्रकार यदि त्याग वृत्ति से या मोह आसक्त होकर गृहस्थ में न रहा जाए तो ईश्वर लाभ गृहस्थ जीवन में ही संभव है। उन्हीं का दूसरा उदाहरण है घर की दासी का। जिस प्रकार घर की दासी मालिक के बच्चों को अपना बच्चा समझती है, प्यार करती है, परंतु यह मन ही मन जानती है कि मेरा मुन्ना तो मेरे घर है, उसी प्रकार गृहस्थ घर का सभी कार्य करे परंतु अनासक्त भाव से मन उसका ईश्वर के समीप ही रहे, तभी गृहस्थ जीवन में रहकर भी भक्ति मार्ग पर चला जा सकता है। पृष्ठ संख्या 340। पांचवा बिंदु है किसी भी जाति आयु या लिंग का भक्ति मार्ग के लिए बंधन नहीं है। भक्ति मार्ग में चांडाल या निकृष्ट कुल में उत्पन्न व्यक्ति और उच्च कुल में उत्पन्न दोनों का स्थान एक है। ईश्वर प्रेम से ओतप्रोत नीच कुलोद्भव व्यक्ति ईश्वर का दास होने के कारण उस ब्राह्मण से उच्च है जो बिना ईश्वर प्रेम के जीता है। इसी तरह किसी भी आयु का व्यक्ति जिसमें भक्ति भाव विद्यमान है भक्ति मार्ग का अनुसरण कर सकता है। कहते हैं जिस प्रकार प्रस्फुटित पुरुष देवताओं के लिए अधिक उपयुक्त होता है, उसी प्रकार प्राथमिक अवस्था में ही ईश्वर भक्ति अधिक उपयुक्त मानी जाती है। भक्ति मार्ग में स्त्री पुरुष का भी भेद नहीं है। कोई भी ईश्वर भक्ति से पूर्ण इस मार्ग पर चल सकता है। छठवां है गीता और रामचरितमानस में नकारात्मक ढंग से भक्ति मार्ग पर चलने वाले अधिकारी व्यक्ति के लिए कहा गया है कि जो व्यक्ति सठ है, हठी है, जिसे ईश्वर की लाली में रुचि नहीं है, जो लोभी, क्रोधी, कामी है, वह इस मार्ग का अधिकारी नहीं है। भक्ति मार्ग के लिए सत्संगति की आवश्यकता है। कुमार्ग पर चलने वाला व्यक्ति इसका अधिकारी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है गुरु के चरणों में प्रीति रखने वाला गोविंद की प्रीति पा सकता है। अब अगला शीर्षक है भक्त के विभिन्न रूप। भक्ति मार्ग के विभिन्न रूप हैं। इनमें से किसी भी रूप में भक्ति की जा सकती है और मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। वैष्णव संतों और भक्तों द्वारा तथा रामचरितमानस में नवधा भक्ति को महत्व दिया गया है, अर्थात नौ रूपों में भक्ति की अभिव्यक्ति होती है। ये नौ साधन हैं पूजा करना, वंदना करना, ईश्वर की दासता, सेवा करना, ईश्वर का स्मरण करना, ईश्वर के गुणों का कीर्तन एवं श्रवण करना, सखा भाव रखना और अंत में आत्मनिवेदन करना। इसी को रामचरितमानस में भी कहा गया है कि प्रथम भक्ति संतों का सत्संग, दूसरी ईश्वरीय कथा में प्रेम, तीसरी गुरु के चरणों की सेवा, चौथी कपट त्याग कर ईश्वर गुणगान करना, पांचवी गुरु के दिए मंत्र का ईश्वर में दृढ़ विश्वास के साथ जाप करना, छठी बहुप्रपंची न होकर शील संयम का पालन करते हुए निरंतर सज्जनों के धर्म कर्म में लीन रहना, सातवीं जगत को ईश्वरमय देखना और ईश्वर से भी अधिक संत को महत्व देना, आठवीं जो भी लाभ हो उसी में संतोष तथा स्वप्न में भी दूसरों में दोष न देखना, नवीं सरलता तथा दूसरों के साथ छलहीन व्यवहार न करना, और अंत में भक्ति का यह रूप हो कि भक्त ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखे तथा हृदय से प्रसन्न रहे। ईश्वर पर भरोसा रखने वाला दीन और कातर न हो। मानस में यह भी कहा गया है कि इनमें से यदि एक भी किसी में है तो वह ईश्वर को अत्यंत प्रिय है। पूजा की दृष्टि से प्रतिमा की पूजा को भी भक्ति का ही एक रूप माना गया है। इससे भी ईश्वर भक्ति दृढ़ होती है और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। प्रतिभा के रूप में ईश्वर की ही पूजा की जाती है। पृष्ठ संख्या 341। मूर्ति पूजा के निंदकों को स्वामी विवेकानंद ने जो चेतावनी दी उससे भक्ति के प्रतिभा पूजन के रूप की महत्ता प्रकट होती है। यदि मनुष्य जड़ मंदिर बनाकर भगवान में प्रीति कर सके तो अच्छा ही है। यदि भगवान की मूर्ति बनाकर इस प्रेम के आदर्श पर पहुँचने में मनुष्य को कुछ भी सहायता मिलती है तो उसे एक ही जगह 20 मूर्तियाँ पूजने दो। चाहे कोई भी काम क्यों न हो, यदि उसके द्वारा धर्म के उस उच्चतम आदर्श पर पहुँचने में सहायता मिलती है तो उसे वह अबाध गति से करने दो, पर हाँ वह नैतिकता के विरुद्ध न हो। भक्त का एक वह भी रूप है जिसमें भक्त ईश्वर को अपने भाव या दृष्टिकोण के आधार पर माता, पिता, सखा, प्रीतम, पुत्र, दास आदि के रूप में चाहता है और उससे प्रेम स्थापित करता है, एक रूपता या तादात्म्य स्थापित करता है। यही एक रूपता ही मोक्ष है। इन भावों के आधार पर अनेक भक्तों ने ईश्वर सानिध्य प्राप्त किया है। इसकी चर्चा भक्ति साहित्य और इतिहास में मिलती है। सूर, तुलसी, मीरा तथा गोपियों का उदाहरण इसका प्रमाण है। इन संबंधों के आधार पर भक्ति के कई रूप देखे जाते हैं, जैसे दास्य, सख्य, वात्सल्य, मातृ, माधुर्य भक्ति। अंत में संत भाव से की गई भक्ति होती है जिसमें ईश्वर को सब कुछ माना जाता है। ईश्वर सर्वव्यापी, कर्ता, अनंत तथा प्रेम स्वरूप है। स्वामी विवेकानंद ने भक्ति की तुलना एक त्रिकोण के साथ की है। इसमें पहला कोण है भक्ति कोई प्रतिदान नहीं चाहती, दूसरा प्रेम या भक्ति में भय नहीं है, तीसरा प्रेम ही प्रेम का लक्ष्य है। अंत में संत या भक्त इसी भाव पर आ पहुँचता है कि स्वयं प्रेम ही भगवान है और बाकी सब कुछ असत है। संत भाव में भक्त ईश्वर को ही सर्वत्र देखता है। मोक्ष का यही वह रूप है जब भक्त भक्ति या प्रेम में देखता है कि वही वह शक्ति है जो सूर्य, चंद्र और तारों को घुमाती एवं चलाती है तथा स्त्री पुरुषों में, सभी जीवों में, सभी वस्तुओं में प्रकाशित हो रही है। जड़ शक्ति के राज्य में मध्याकर्षण शक्ति के रूप में वही विद्यमान है। प्रत्येक स्थान में, प्रत्येक परमाणु में वही वर्तमान है। सर्वत्र उसकी ज्योति छिटकी हुई है, वही अनंत प्रेम स्वरूप है, संसार की एकमात्र संचालनी शक्ति है और वही सर्वत्र प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। अब अगला शीर्षक है कर्म मार्ग। इसके अंतर्गत शीर्षक है प्रस्तावना। भारतीय धर्म साधना में मोक्ष की प्राप्ति के लिए दो मार्गों को निर्धारित किया गया है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग वह मार्ग है जिससे कर्म करने में प्रवृत्ति होती है, अर्थात इसमें कर्म की प्रेरणा होती है, मनुष्य कर्म में लीन होता है। प्रवृत्ति मार्ग सकाम है, इसके अनुसार लौकिक तथा पारलौकिक जगत में सुख की प्राप्ति के लिए कर्म करना आवश्यक है। सकाम कर्म में सुखद वस्तु के प्रति राग अथवा लगाव उत्पन्न होता है और दुखद वस्तुओं के प्रति विराग होता है। ऐहिक जीवन के लिए अर्थात स्त्री पुत्र धन यश आदि के लिए किए गए कर्म सकाम हैं। प्रवृत्ति मार्ग सकाम कर्म का ही मार्ग है। इस मार्ग से किए गए कर्म चूंकि कामना से पूरित होते हैं, फल की आशा से कर्मों का संपादन करते हैं और उसके अच्छे बुरे फलों को प्राप्त करते हैं, फिर कामना होती है और कर्म में प्रवृत्त होकर उसके फल का भोग करते हैं। इस प्रकार अनवरत कर्म की श्रृंखला चलती रहती है। इसका फल यह होता है कि कर्म के बंधन के कारण व्यक्ति आवागमन के चक्कर से छूट नहीं पाता। इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग का यह सबसे बड़ा दोष है कि आसक्ति और मोह के कारण कर्म करने से बंधन ही होता है। पृष्ठ संख्या 342। इसके विपरीत निवृत्त मार्ग है। निवृत्त मार्ग वह मार्ग है जिसके अनुसार कर्मों का त्याग आवश्यक बताया गया है। यह संन्यास मार्ग है। आसक्ति मोह और राग से कर्मों से छुटकारा नहीं मिल सकता और कर्मों से बिना छुटकारा मिले मोक्ष संभव नहीं है। संसार का त्याग अर्थात संन्यास आवश्यक है, इसी से मुक्ति संभव है। इस मार्ग में इंद्रियों को लौकिक विषयों से विरक्त करके बुद्धि को स्थिर किया जाता है और एकाग्रचित्त ब्रह्म का चिंतन किया जाता है। इसे ज्ञान मार्ग भी कहा जाता है। इसके लिए नश्वर जगत का त्याग, कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है। कर्म तो मनुष्य को करना ही होगा, फिर मोक्ष कैसे संभव है? अगला शीर्षक है निष्काम कर्म मार्ग ही मोक्ष का मार्ग है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्ग की कठिनाइयों को देखते हुए गीता में विशिष्ट मार्ग का प्रतिपादन किया गया है, जिसे निष्काम कर्म मार्ग कहते हैं। इसी से मोक्ष प्राप्ति संभव है। इसके अनुसार मनुष्य को कर्म करना ही है। बिना कर्म के न तो अपना अस्तित्व रहेगा, न तो समाज का ही। अतः कर्म अवश्य करना चाहिए, परंतु फल की आशा से नहीं। कर्म निष्काम भाव से आसक्ति रहित होकर करना चाहिए। अनासक्त भाव से कर्म करना मोक्षदायक है। इसके विपरीत आसक्ति से किया गया कर्म बंधन कारक है। गीता के अनुसार कर्म से संन्यास संभव नहीं है, तो कर्म के फलों से संन्यास लेना चाहिए। मनुष्य का अधिकार कर्म करने में तो है, परंतु उसके फल पर उसका वश नहीं है। गांधी जी निष्काम कर्म मार्ग के विषय में कहते हैं, एक ओर से कर्म मात्र बंधन रूप है, यह निर्विवाद है। दूसरी ओर से देही इच्छा अनिच्छा से भी कर्म करता है। शारीरिक या मानसिक सभी चेष्टाएं कर्म है, तब कर्म करते हुए मनुष्य बंधन मुक्त कैसे रहे? जहाँ तक मुझे मालूम है, इस समस्या को गीता ने जिस तरह हल किया है वैसा दूसरे किसी भी ग्रंथ ने नहीं किया है। गीता का कहना है, फलाशक्ति छोड़ो और कर्म करो, आशा रहित होकर कर्म करो, निष्काम होकर कर्म करो। यह गीता की वह ध्वनि है जो भुलाई नहीं जा सकती। जो कर्म को छोड़ता है वह गिरता है, कर्म करते हुए भी जो उसका फल छोड़ता है वह बढ़ता है। फल त्याग का यह अर्थ नहीं है कि परिणाम के संबंध में लापरवाही रहे। परिणाम और साधन का विचार और उसका ज्ञान आवश्यक है। इतना होने के बाद जो मनुष्य परिणाम की इच्छा किए बिना साधन में तन्मय रहता है वह फल त्यागी है। निष्काम कर्म योग प्रवृत्ति मार्ग के अनुसार फल की प्राप्ति भी कराता है और निवृत्ति मार्ग के अनुसार वास्तविक ज्ञान भी देता है कि कर्म त्याग नहीं फल त्याग आवश्यक है। फलाशा ही जीवन का बंधन है, मोक्ष में बाधक है। इस विषय में गांधी जी कहते हैं, फल त्याग का कोई यह अर्थ न करे कि त्यागी को फल मिलता ही नहीं। फल त्याग से मतलब है फल के संबंध में आसक्ति का अभाव। वास्तव में देखा जाए तो फल त्यागी को तो हजार गुना फल मिलता है। जो मनुष्य परिणाम का ध्यान करता रहता है वह बहुत बार कर्म कर्तव्य भ्रष्ट हो जाता है, उसे अधीरता घेरती है, इससे वह क्रोध के वश में हो जाता है और फिर वह न करने योग्य करने लग पड़ता है। एक कर्म में से दूसरे में और दूसरे में से तीसरे में पड़ता जाता है। परिणाम की चिंता करने वाले की स्थिति विषयांध की सी हो जाती है और अंत में वह विषयी की भांति सार असार का नीत अनीत का विवेक छोड़ देता है और फल प्राप्त करने के लिए हर किसी साधन से काम लेता है और उसे धर्म मानता है। पृष्ठ संख्या 343, शीर्षक है, क्या बिना फल की इच्छा के कर्म संभव है? इस संबंध में गीता का यह कहना है कि कर्म का फल तो मिलेगा ही, परंतु कर्ता के कर्म का प्रेरक फल न होकर कर्तव्य के लिए कर्तव्य का नियम होना चाहिए। निष्काम कर्म यह नहीं कहता कि कर्म बिना फल के होगा। इसके अनुसार तो बिना फल का ध्यान किए ही कर्म करना चाहिए। फल चाहे शुभ हो या अशुभ, कर्ता का इससे संबंध नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को शंका होती है कि निष्काम कर्म बिना किसी प्रेरक के कैसे संभव है, परंतु निष्काम कर्म का यह अर्थ नहीं है। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि बिना प्रेरक के कोई कर्म संभव नहीं है। निष्काम कर्म का प्रेरक ईश्वर अर्पण बुद्धि को कहा गया है। श्लोक है, ए तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस मत्पराः अहन्यो योगेन मा ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचिरात् पार्थ मैया अवेशित चेतसाम। अर्थात हे पार्थ, जो मुझ में परायण रहकर सब कर्म मुझे समर्पण करे, अनन्य भाव से या एकनिष्ठ होकर मेरा ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं और मुझ में जिनका चित्त पिरोया हुआ है उन्हें मृत्यु रूपी संसार सागर से मैं झटपट पार कर लेता हूँ। यही समर्पण बुद्धि निष्काम कर्म का प्रेरक है। इस प्रेरणा से किया गया कर्म मनुष्य को बंधन कारक नहीं सिद्ध होता। फिर तो कर्म करना ही मनुष्य के हाथ में रहता है। फल की प्राप्ति तो ईश्वर पर निर्भर है। समर्पण युक्त कर्म ही मनुष्य को अपने लक्ष्य की सिद्धि दिलाता है। ईश्वर ही समुद्धरता है, फिर फल की आशा में घूमते रहने की क्या आवश्यकता। इस ज्ञान और समर्पण या भक्ति से निष्काम कर्म संभव है। अगला शीर्षक है निष्काम कर्म मार्ग की श्रेष्ठता। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही ज्ञान और भक्ति की महत्ता स्वीकार करते हुए भी निष्काम कर्म योग को श्रेष्ठ माना है। अभ्यास मार्ग से ज्ञान मार्ग श्रेष्ठकर है, ज्ञान मार्ग से ध्यान मार्ग श्रेष्ठ है और ध्यान मार्ग से कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि इस त्याग के अंत में तुरंत ही शांति होती है। इस पर टिप्पणी करते हुए गांधी जी कहते हैं, अभ्यास अर्थात चित्त वृत्ति निरोध की साधना, ज्ञान अर्थात श्रवण मनन आदि, ध्यान अर्थात उपासना, इनके फलस्वरूप यदि कर्म फल त्याग न दिखाई दे तो वह अभ्यास अभ्यास नहीं है, ज्ञान ज्ञान नहीं है और ध्यान ध्यान नहीं है। इस प्रकार निष्काम कर्म मार्ग ही वह मार्ग है जो ज्ञान भक्ति में समन्वय स्थापित करता है। यह संभव इसलिए भी है कि निष्काम भाव से किया गया कर्म ईश्वर अर्पित भाव से होता है। यही गीता का समर्पण योग है। इसी समर्पण योग से स्थित प्रज्ञ या गुणातीत की स्थिति प्राप्त हो सकती है। यही मुक्ता अवस्था है। कर्म मार्ग के इसी निष्काम कर्म योग को मोक्ष का मार्ग बताया गया है। अब अगला शीर्षक है योग मार्ग। मोक्ष प्राप्ति के विभिन्न मार्गों में योग मार्ग का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका महत्व इससे भी प्रकट होता है कि मोक्ष के विभिन्न साधनों में योग शब्द जुड़ा रहता है। साधक की जैसी वृत्ति होती है उसी के अनुसार वह उस साधन का उपयोग करता है। जैसे भक्ति ज्ञान कर्म आदि साधनों में जो साधक भक्ति प्रधान है वह भक्ति योग का अनुसरण करता है। जो ज्ञान प्रधान है वह ज्ञान का योग तथा जो कर्म प्रधान है वह कर्म योग का अनुसरण करता है। पृष्ठ संख्या 344। इससे यह भी परिलक्षित होता है कि सभी मार्गों में योग तत्व निहित रहता है। योग का सामान्य अर्थ होता है जोड़ना। मोक्ष के मार्ग या साधन के रूप में योग का अर्थ होता है वह साधन जिससे परमात्मा से युक्त हुआ जाए या जुड़ा जाए। इस प्रकार योग का दो अर्थों में उपयोग होता है, एक साधन के रूप में और दूसरा ईश्वर और जीव के मिलने की अवस्था के रूप में। ईश्वर और जीव या आत्मा तथा परमात्मा के एक हो जाने या संयुक्त हो जाने की अवस्था योग है। साधन के रूप में कुछ क्रियाएं जैसे संयम, नियम, आसन आदि का पालन आवश्यक होता है। ये सभी क्रियाएं योग के अंतर्गत आती हैं और उनका प्रयोग सभी मार्गों में कुछ न कुछ किया जाता है। इसलिए व्यापक रूप में सभी मार्गों में योग शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस अर्थ में योग एक विधि या प्रणाली भी है। योग को सामान्य अर्थ के अतिरिक्त एक विशिष्ट अर्थ में भी लिया जाता है। विशिष्ट अर्थ में योग एक विशिष्ट मार्ग या साधन है जिससे मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इस विशिष्ट साधन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। पतंजलि के अनुसार योग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा मन को नियंत्रण में रखकर मोक्ष की प्राप्ति की जाती है। इसमें शारीरिक और मानसिक अनुशासन के द्वारा एकाग्रता और समाधि की स्थिति को प्राप्त किया जाता है। इस पद्धति को राजयोग भी कहा जाता है। यह सभी योग पद्धतियों में श्रेष्ठ कहा जाता है क्योंकि यह वह साक्षात विधि है जिसके द्वारा शीघ्रातिशीघ्र ईश्वरानुभूति की जा सकती है। यह व्यवहारिक और वैज्ञानिक पद्धति है। पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध या सर्वथा रुक जाना योग है। योगश्चित वित्त निरोध। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है उस समय दृष्टा या आत्मा की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है अर्थात वह मोक्षा अवस्था को प्राप्त हो जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार अज्ञान ही बंधन का कारण है। योग के अनुसार जब आत्मा अपने को अनात्म वस्तुओं से अलग समझ लेती है तभी मोक्ष की अवस्था प्राप्त होती है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता है। इसके लिए चित्त की एकाग्रता स्थिरता आवश्यक है। योग के अनुसार चित्त में वृत्तियाँ उत्पन्न होती रहती हैं। इससे चित्त सदैव चंचल रहता है। इन वृत्तियों जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि का निरोध होना मोक्ष के लिए आवश्यक कहा गया है। इस निरोध में आत्मा वृत्ति की ओर आकृष्ट नहीं होगी तो बंधन भी रुक जाएगा। योग दर्शन में मन या चित्त वृत्तियों के विभिन्न रूपों को न ग्रहण कर सके इस पर बल दिया गया है। दूसरे शब्दों में योग का उद्देश्य चित्त या मन की क्रियाओं को रोकना है। जब इसका कार्य करना रुक जाएगा तो आत्मा निर्लिप्त होकर स्वतंत्र या मुक्त हो जाएगी। जब मन या चित्त शांत और क्रिया से शून्य हो जाएगा तो आत्मा पूर्णतया जगत में अनासक्त हो जाएगी। यही निर्लिप्तता अवस्था मोक्ष है। मन ही बंधन का कारण है। इसी से अहम, बंधन और आसक्त की उत्पत्ति होती है। जब मन या चित्त की क्रिया रुक जाएगी तो व्यक्ति संसार से कुछ ग्रहण नहीं करेगा अर्थात संसार से अथवा अनात्म से अपने को स्वतंत्र पाएगा। इसी अवस्था में मन या चित्त की क्रिया वृत्ति जैसे आसक्ति, बंधन, मोह, लोभ, क्रोध आदि समाप्त हो जाएगी। यही मोक्षा अवस्था है। इसीलिए पतंजलि ने योगश्च वित्त निरोधः कहा है। इस आध्यात्मिक साधन के लिए राजयोग ने 8 अंगों को निर्धारित किया है। यही 8 मार्ग योग की अवस्था को प्राप्त करने के साधन है। इसे अष्टांग मार्ग भी कहा जाता है। राजयोग के अष्टांग मार्ग इस प्रकार हैं। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, 6 धारणा, 7 ध्यान, 8 समाधि। पृष्ठ संख्या 345। अब पहला है यम। बाह्य और आंतरिक संयम और नियमन को यम कहा गया है। योग के लिए अनुशासन आवश्यक है। यह अनुशासन बाहर और भीतर अर्थात शरीर तथा मन दोनों का है। बाह्य और आंतरिक पवित्रता बिना योग की प्राप्ति के नहीं आ सकती। पतंजलि ने यम की परिभाषा इस प्रकार की है। अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्या परिग्रह यमः, अर्थात अहिंसा सत्य अस्तेय या चोरी का अभाव ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह या संग्रह का अभाव, ये 5 यम हैं। इसमें पहला है अहिंसा। मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्राणी को कभी किसी प्रकार की भी दुख न पहुँचाना अहिंसा है। दूसरे के दोष को देखने का त्याग भी अहिंसा के अंतर्गत ही आता है। दूसरा है सत्य। प्रत्यक्ष रूप में देखा या सुना है अथवा अनुमान करके जो अनुभव किया है, ठीक वैसे ही प्रिय और हितकर वचन बोलना सत्य है। अर्थात साधक को मन और वाणी से सत्य का पालन करना चाहिए। छल और कपट रहित व्यवहार भी सत्य व्यवहार कहा जाता है। तीसरा है अस्तेय। किसी भी प्रकार की चोरी के अभाव का नाम अस्तेय है। छल से अपहरण करके किसी की वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। चौथा है ब्रह्मचर्य। मन, वाणी और शरीर से होने वाले सब प्रकार के मैथुनों का सब अवस्थाओं में सदा त्याग करके सब प्रकार से वीर की रक्षा करना ब्रह्मचर्य है। पांचवा है अपरिग्रह। वस्तुओं का अनावश्यक संग्रह न करना ही अपरिग्रह है। अपने स्वार्थ के लिए ममता पूर्वक धन संपत्ति का संचय करना परिग्रह है। इसका अभाव ही अपरिग्रह है। साधक को लोभ वश किसी वस्तु का संग्रह करना उचित नहीं है। अब अगला है दूसरा नियम। योग के अनुसार मोक्ष के लिए नियम अनिवार्य है। आचरण की पवित्रता कुछ नियमों पर ही निर्भर है। अतः नियम का अर्थ है सदाचार को अपनाना। पतंजलि के अनुसार शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर शरणागति, ये 5 नियम हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधनानि नियमाः। अब शौच है, योगी को ब्रह्म और आंतरिक शुचिता पर ध्यान देना होगा। शरीर, वस्त्र और मकान आदि के मल को दूर करना बाह्य शुद्धि है। न्यायपूर्वक धन का अर्जन करना, उससे शुद्ध अन्न को प्राप्त करना, पवित्र व्यवहार करना बाह्य शौच के अंतर्गत आता है। जप तप करना, शुद्ध विचारों में मैत्री आदि भावनाओं तथा सद्गुणों से अंतःकरण के राग द्वेष आदि विकारों को नष्ट करना आंतरिक पवित्रता है। अब है संतोष। अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करते हुए प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी प्राप्त हो जाए तथा जिस परिस्थिति और अवस्था में रहने का जो संयोग प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहना तथा किसी प्रकार की कामना तृष्णा न करना संतोष है। अब है तप। स्वधर्म का पालन करना तथा उसके पालन में जो शारीरिक और मानसिक कष्ट हो, सर्दी गर्मी सुख दुख द्वंद्व आदि हो, उसे सहर्ष सहन करना ही तप है। व्रत उपवास भी इसके अंतर्गत आते हैं। तप करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। पृष्ठ संख्या 346। अब है स्वाध्याय। वेद शास्त्र आदि धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करना, महापुरुषों संतों आदि की जीवनी का अध्ययन करना, ईश्वर के किसी नाम का जप करना स्वाध्याय है। अपने जीवन का अध्ययन करना, अपने भीतर दोषों को देखकर निकालते रहना भी इसी के अंतर्गत आता है। अब अगला है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर को ही सब कुछ मानते हुए उनके प्रति शरणापन्न हो जाने का नाम ईश्वर प्राणिधान है। ईश्वर का सतत चिंतन करते हुए अपने समस्त कर्मों तथा फलों को अर्पित कर देना, अपने को ईश्वर के हाथों का यंत्र तथा ईश्वर को यंत्री समझना, जैसी स्थिति में रखे उसी में सहर्ष रहना तथा ईश्वर से अनन्य प्रेम रखना आदि सभी ईश्वर प्राणिधान के अंग माने जाते हैं। अब अगला मार्ग है तीसरा आसन। निश्चल सुखपूर्वक बैठने का नाम आसन है, स्थिर सुखम आसनम। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शरीर को किसी विशेष मुद्रा में निश्चल रखना आसन कहलाता है। ध्यान के लिए शरीर को आसन में रखना आवश्यक होता है। आसन से शरीर और मन दोनों पर नियंत्रण हो जाता है, जो योग के लिए अनिवार्य है। अब चौथा है प्राणायाम। श्वास और प्रश्वास की गति का रुक जाना प्राणायाम है। श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदा। प्राणवायु का शरीर में प्रविष्ट होना श्वास है और बाहर निकलना प्रश्वास है। इन दोनों की गति का रुक जाना प्राणायाम का सामान्य लक्षण कहा जाता है। प्राणायाम से चित्त में स्थिरता आती है, इससे शरीर और मन दोनों दृढ़ होते हैं। योग की स्थिति प्राप्त करने के लिए प्राणायाम अनिवार्य होता है। योग सूत्र में प्राणायाम के तीन भेद बतलाए गए हैं। इसमें पहला बिंदु अ है बाह्य वृत्ति या रेचक। प्राणवायु को शरीर से बाहर निकालना और उसे कुछ समय तक बाहर ही सुखपूर्वक रोके रखना बाह्य वृत्ति प्राणायाम है। इसी को रेचक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें रेचन पूर्वक प्राण को रोका जाता है। वह है आभ्यंतर वृत्ति या पूरक। इसमें प्राणवायु को भीतर ले जाते हैं और जितने काल तक सुखपूर्वक रोक सकते हैं उतने समय तक रोके रखते हैं। यही अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम है, इसी को पूरक कहते हैं। स है स्तंभ वृत्ति या कुंभक। प्राणवायु स्वाभाविक रूप से बाहर या भीतर जहाँ गया हो उसे वहीं स्तंभित कर देना या रोक देना स्तंभ वृत्ति या प्राणायाम है। उसे कुंभक प्राणायाम भी कहा जाता है। पतंजलि ने प्राणायाम के महत्व को यह कहते हुए सिद्ध किया है कि ततः छियते प्रकाश वरणम, अर्थात प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाश या ज्ञान का आवरण छीण हो जाता है। आवरण का अर्थ कर्म संस्कार और अविद्या आदि है। प्राणायाम से यह आवरण छीण हो जाता है, फिर साधक इनसे मोहित होकर अज्ञान में नहीं रहता। उसका ज्ञान सूर्य की भांति प्रकाशित हो जाता है। प्राणायाम से मन में धारणा की योग्यता भी आ जाती है। अब पांचवा है प्रत्याहार। इंद्रियों की बाह्य वृत्ति को सब ओर से हटाकर मन में विलीन करके अभ्यास को प्रत्याहार कहते हैं। इंद्रियां ही मन को चंचल करती हैं, इधर उधर ले जाती हैं। उन्हें ही बाह्य विषयों से हटाकर मन के वश में करने के इस अभ्यास को प्रत्याहार की संज्ञा दी जाती है। जब तक इंद्रियां मन के वश में नहीं हो जाती तब तक ध्यान लगाना संभव नहीं है। योगा अभ्यास के लिए ध्यान को एक ओर लगाना आवश्यक है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि इंद्रियों को उनके विषयों से हटकर मन के वश में किया जाए। पृष्ठ संख्या 347। इंद्रियों पर नियंत्रण होने से वह विषयों के पीछे नहीं जाती, अतः मन भी चंचल नहीं होता और ध्यान में बाधा भी नहीं पड़ती। कहते हैं कि प्रत्याहार की सिद्धि होने के पश्चात इंद्रिय विजय के लिए किसी दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं रहती। अब सातवां है धारणा। धारणा में किसी एक वस्तु पर चित्त या मन को लगाना होता है। पतंजलि के अनुसार देश बंधश्चितस्य धारणा, अर्थात बाहर या शरीर के भीतर कहीं भी किसी एक देश या स्थान में चित्त को ठहराना धारणा है। कहा जाता है कि नाभि चक्र, हृदय कमल आदि शरीर के आंतरिक देश या स्थान हैं। या तो इन स्थानों पर चित्त की वृत्ति को लगाया जाए या फिर शरीर के बाहर आकाश, सूर्य, चंद्रमा, किसी मूर्ति आदि पर चित्त को लगाया जाए। यही धारणा है। धारणा के अभ्यास से ध्यान की क्रिया का मार्ग पुष्ट होता है। धारणा के पश्चात साधक ध्यान के योग्य सिद्ध हो जाता है। बिंदु सातवां है ध्यान। योग सूत्र में कहा गया है तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, अर्थात जहाँ चित्त को लगाया जाए उसी में वृत्ति का एक तार चलना ध्यान है। धारणा के पश्चात ध्यान की क्रिया है। ध्यान की क्रिया धारणा से शुरू होती है। ध्यान में बिना किसी रुकावट के एक तार किसी वस्तु पर चित्त को एकाग्र किया जाता है। ध्यान से विषय का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। आठवां है समाधि। समाधि ध्यान की पूर्णा अवस्था है। ध्यान में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का अभ्यास रहता है, अर्थात आत्म चेतना रहती है। समाधि की अवस्था में इस चेतना का भी लोप हो जाता है। इस अवस्था में चित्त की वृत्तियों का पूर्ण लोप हो जाता है। योगी इसी अवस्था में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। योग में समाधि ही योगी का चरम लक्ष्य माना गया है। पतंजलि ने समाधि के दो भेदों का उल्लेख किया है। पहला है संप्रज्ञात समाधि, दूसरा है असंप्रज्ञात समाधि। जी कास्टर ने अपनी पुस्तक योग एंड वेस्टर्न साइकोलॉजी में इसे क्रमशः चेतन और अचेतन समाधि की संज्ञा दी है। अब पहला है संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि वितर्क, विचार, आनंद तथा अस्मिता से युक्त होती है, इसलिए इसे सबीज समाधि भी कहते हैं। इसके चार प्रकार हैं। पहला अ है सवृतक समाधि। इसमें बाह्य स्थूल भूत ही ध्यान के विषय होते हैं। वितर्क का अर्थ है प्रश्न और सवितर्क का अर्थ है प्रश्न सहित, अर्थात उन स्थूल भूतों से पूछना जिससे वे अपने अंतर्गत सत्य और अपनी सारी शक्ति अपने ऊपर ध्यान करने वाले पुरुष को दे दें। इसी को सवितर्क कहते हैं। अब ब है सविचार समाधि। इसमें ध्यान का विषय सूक्ष्म पदार्थ है। इसके सविचार तथा निर्विकार दो रूप हैं। इसी प्रकार जब ग्राह्य या इंद्रियों के स्थूल और सूक्ष्म विषय और ग्रहण या इंद्रियां और अंतःकरण के सूक्ष्म रूप में समाधि की जाती है, उस समय समाधि में जब तक शब्द और ज्ञान का विकल्प रहता है तब तक वह सविचार, और जब इनका विकल्प नहीं रहता तब वही निर्विकार कही जाती है। बिंदु स है आनंदानुगता समाधि। इसे आनंद समाधि भी कहा जाता है। इसमें आनंद का अनुभव होता है, इसीलिए इसे सानंद समाधि कहा गया है। इसमें अंतःकरण को ध्यान का विषय बनाया जाता है, और जब अंतःकरण को रज और तम इन दोनों गुणों से रहित सोचा जाता है तब उसे आनंद समाधि कहते हैं। बिंदु द है अस्मिता समाधि। इसमें स्वयं मन ही ध्यान का विषय होता है। जब ध्यान बिल्कुल परिपक्व और एकाग्र हो जाता है, जब स्थूल और सूक्ष्म भूतों की समस्त भावनाएं त्याग दी जाती हैं और जब अन्य सब विषयों से पृथक होकर अहंकार की केवल सुप्ता अवस्था ही शेष रह जाती है तब उसे अस्मिता समाधि कहते हैं। इस अवस्था में भी पूर्णतया मन के अतीत होना संभव नहीं होता। पृष्ठ संख्या 348। वेदों में इस अवस्था को प्राप्त पुरुषों को विदेह की संज्ञा प्राप्त है, और जो लोग इस अवस्था में रहते हुए बिना परम पद की प्राप्ति के प्रकृति में लीन हो जाते हैं उन्हें प्रकृति लय कहा जाता है। परंतु यह सब सूक्ष्म भोग सुख है। जो इसे भी प्राप्त कर संतुष्ट नहीं होते वे ही मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार संप्रज्ञात समाधि मुक्ति प्राप्ति की पूर्व तैयारी स्वरूप है। अब दूसरा है असंप्रज्ञात समाधि। इसे निर्वीज समाधि भी कहते हैं। संप्रज्ञात समाधि में चित्त वृत्तियों का केवल दमन भर होता है, फिर भी वे संस्कार या बीजाकार में विद्यमान रहती हैं। समय पाते ही वे पुनः प्रकट हो जाती हैं। असंप्रज्ञात या निर्वीज समाधि ज्ञानातीत अवस्था है। इसमें संस्कारों को भी निर्मूल कर दिया जाता है। जब मन को लगभग नष्ट कर दिया जाता है तब समाधि निर्बीज हो जाती है। वेदांतियों के अनुसार भी समाधि दो प्रकार की होती है, जो पतंजलि योग की समाधि के समान ही है। इनके अनुसार संप्रज्ञात को सविकल्प तथा असंप्रज्ञात को निर्विकल्प समाधि कहा जाता है। सदानंद के अनुसार सविकल्प समाधि एक मानसिक वृत्ति है और जिसका विषय शुद्ध चैतन्य या ब्रह्म है। इसी में वृत्ति का परिवर्तन कर देना इसका लक्ष्य है। इसमें ज्ञाता ज्ञान तथा ज्ञेय का विभेद नष्ट नहीं होता। निर्विकल्प समाधि की परिभाषा भी मानसिक वृत्ति कहकर की गई है, जिसका परिवर्तन ब्रह्म या पूर्ण चैतन्य में ही कर देना है। इसमें साधक ब्रह्म से अपनी पूर्ण रूपेण समागम स्थापित कर लेता है। यह अवस्था शुद्ध ब्रह्म की चेतन अवस्था है। पतंजलि के अनुसार अष्टांग मार्ग से की जाने वाली साधना के आधार पर पूर्ण समाधि संभव है। समाधिक में योगी को पूर्ण ज्ञान हो जाता है, उसे अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान हो जाती है, फिर वह दुख नहीं भोगता, मुक्त हो जाता है, उसकी अविद्या दूर हो जाती है। योगा अभ्यास से योगी में अनेक शक्तियाँ भी आ जाती हैं, परंतु साधक इनके लिए साधना नहीं करता। मोक्ष को चाहने वाला मुक्ति के लिए योग का अभ्यास करता है। अध्याय 22 समाप्त।